ओम शांति। आज की मुरली पे चर्चा करेंगे। स्वयं भगवान जब पढ़ाने आते हैं तो पढ़ाने का लक्ष्य न केवल ज्ञान देना बल्कि हमें बहुत पावरफुल बनाना, हमें जगाना। तो आज की मुरली में हमें पावरफुल बनाने की एक बहुत सुंदर बात थी, बोलो कौन सी थी वो? हम बहुत पावरफुल बन जाए जिससे बोलो याद करो। मैंने इसलिए प्रश्न पूछा है, प्रश्न ये नहीं था मुरली में, पर जो बात थी वो हमें पावरफुल बनाने के लिए थी। वो थी परिस्थितियां कैसी लगे? मनोरंजन लगे। ये कमजोर आत्माओं से तो नहीं होगा, कमजोर आत्माओं को तो परिस्थितियां मार डालती हैं। खुशी भी गुम, शांति भी गुम, बाबा में भी विश्वास खत्म, बाबा भी मेरे लिए कुछ नहीं करता। जैसे आज भी था ना मुरली में, मेरे लिए भी समय दो, मेरी भी सुने कोई, मेरा भी फैसला करे। ये कमजोर आत्माओं के, बाबा हमें मोस्ट पावरफुल बनाना चाहता है। परिस्थितियां मनोरंजन लगे, लग सकती हैं क्या? माताओं का क्या अनुभव है? हो सकता है या ये कहने की बातें हैं? सब होता है, होता है। या जरा सा बच्चा गड़बड़ कर ले और माँ परेशान, बच्चे की स्थिति कम खराब, माँ की डबल खराब, क्या माताओं का अनुभव है? कैसे हो? पहले परिस्थिति हमारी स्थिति को हिलाए नहीं, मनोरंजन तो बड़ी बात है, परिस्थितियां हमें हिलाए नहीं, चिंतन करना है। और था सफल करने पर, कौन सी गुहे बात थी आज? नहीं, और इससे पहले ही ये तो बाबा की बहुत बार सुनी है, सफल करो सफलता पाओ। लेकिन आज था जो निश्चिंत रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है। सफलता का आधार है एक बल, एक भरोसा। बाकी पांच चीजों को सफल करने के लिए कहा, जो समय को सफल करते हैं क्या मिलता है उन्हें? पूरा समय राज के साथ लंबा काल राज, 21 जन्मों में अनेक बार राज। दूसरा किसे सफल करना है? श्वासों को सफल करने वालों को, श्वास रुकेगा नहीं, हार्ट फेल नहीं होगा, सदा स्वस्थ रहेंगे, द्वापर के बाद भी बहुत स्वस्थ रहेंगे। तीसरा सफल किसको करना है? ज्ञान खजाने को जिन्होंने सफल किया उन्हें सत्युग त्रेता में वजीरों की जरूरत नहीं, वो बहुत बुद्धिमान बन गए। चौथा किसे सफल करना है? शक्तियों को। ये बहुत अच्छी बात थी, क्या मिलेगा? उनके राज्य में, बाबा के शब्द ये थे, उनके राज्य में किसी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। अर्थात ऐसे पावरफुल हैं कि किसी को उनकी ओर देखना ही नहीं है कि इनका राज ले लें, ये बड़े मालदार हैं, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कलयुग में होता रहा ना, अटैक होते रहे, थोड़ा कमजोर है चलो आक्रमण करो, ले लो इसका सब कुछ। सब शक्तियां भरपूर, और शक्तियां होने से प्रकृति बहुत अच्छी, और कितनी अच्छी बात थी कल परसों कि वहाँ पक्षी भी बड़ी मर्यादाओं में और आसपास ही घूमेंगे, डरेंगे नहीं, जैसे यहाँ बिल्ली बैठी रहती है ना वो पास में, डरेंगे भी नहीं और कुछ गंद भी नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छे, काटेंगे तो है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं है। और किसे सफल करना है? गुणों को और स्थूल धन को। गुणों को करने से महिमा और धन को सफल करने से अथा धन। चारों युग, बाबा दो युग की बात तो कहता है पर उसका इफेक्ट द्वापर कलयुग में भी चलता रहता है। जो यहाँ भगवान के कार्यों में सहयोग करते हैं उन्हें द्वापर युग के बाद बाबा का सहयोग मिलता रहता है। देखो जब हम भक्ति में आएंगे, बाबा को याद करेंगे, कहीं मुसीबत के समय पुकारेंगे भी, मदद चाहिए तुम्हारी, अधिकार से ही करेंगे, मदद चाहिए हमें, तो किनकी सुनवाई होगी? जिन्होंने यहाँ बाबा की सुनवाई की है, जिन्होंने यहाँ उसके महान यज्ञ में बहुत मदद की है, उन्हें मदद मिलती रहेगी। और जिन्होंने उसको सुना नहीं कि तुम तो रोज ही कहते रहते हो विनाश होगा, होता तो है ही नहीं, और जिस दिन होने लगेगा तो कहेंगे बाबा रोको इसे, ये तो बहुत खतरनाक है, हमें थोड़ा ही पता था ऐसा भी होगा, हमने तो सोचा था रात को सोएंगे सवेरे उठेंगे नहीं परम धाम होंगे, ये तो गड़बड़ होने लगी। इसलिए बाबा हमें समय दे रहा है अपने को पावरफुल बनाओ ताकि विनाश में हम भी औरों की तरह रोते न रह जाएं, हम रोतों को हंसाने वाले बन जाएं, देने वाले बन जाएं, मांगने वाले नहीं, हमें कोई मदद करे। उस टाइम बाबा की मदद नहीं होगी, याद है क्यों? पेपर के समय मदद नहीं की जाती, अब है बाबा साथी और तब होगा साक्षी, ये भूलना नहीं है। कोई तब परेशान हो कि बाबा हमें मदद नहीं कर रहा है, मदद के समय जिसने मदद ले ली उनको उस समय मदद की जरूरत नहीं रहेगी, उन्हें आप ही फील होगा बाबा साथ है, वो मदद कर रहा है। तो परिस्थितियां मनोरंजन लगे, आज की मुरली में बहुत सारी बातें थी, परिस्थितियां मनोरंजन लगे। कुछ पॉइंट सुना दें, पांच बातें निकाल लें, परिस्थितियां हमें हिला न दे, हम परेशान न होते रहें कि ये भी क्या जीवन है, जब से बाबा के बने हम तो पहले ही अच्छे थे, बहुत ये भी कहते हैं, हम तो पहले ही अच्छे थे, जब से बने तब से विघन ही विघन आ रहे हैं। कई तो कहते हैं हमारा गुरु ही अच्छा था, साईं बाबा के पास चले जाते थे समस्या ठीक कर देता था, यहाँ तो बाबा सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? सुनता नहीं या सुनता है? सुनता है, पर अगर ऐसा लगता है कि सुनता नहीं है, कभी कभी वो नहीं सुनता, बताओ क्यों? नहीं, ये उत्तर भाई देंगे और देंगे उत्तर दूसरा, बाबा हमें इतना पावरफुल बनाना चाहता है कि हम किसी की ओर भी प्यासी नजरों से न देखें, हम समर्थ हो जाएं अपनी परिस्थितियों को पार करने के लिए। बाबा को बार बार बुलाएं वो एक चीज है जरूर, वो हमारा है, हम उसकी मदद लेंगे, पर बाबा चाहता ये है कि हम सबकी मदद करने वाले बने, इतने योग्य और शक्तिशाली बन जाएं। इसलिए कभी कभी वो चलने देता है, चलो जरा घिस पिट के पावरफुल बन जाएंगे, गिरेंगे उठेंगे चोट लगेगी पावरफुल बन जाएंगे, जिन बच्चों को माँ बाप बड़े प्यार से पालते हैं, बिल्कुल इधर उधर नहीं होने देते, वो कमजोर रह जाते हैं, और जो संघर्षों के साथ आगे बढ़ते हैं वो संसार में बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं परिस्थितियों में। बोलो, पहली बात स्वस्थिति श्रेष्ठ, बोलो आगे, तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं। एक बात ध्यान ये देना है, स्वस्थिति बिगड़ गई तो परिस्थिति और बिगड़ेगी, स्वस्थिति अच्छी रही तो परिस्थिति खत्म होती जाएगी। और स्वस्थिति अच्छी बनती है स्वमान से, स्लोगन है हमारा, कहीं लिखा हुआ होगा यहाँ भी, स्वस्थिति अच्छी बनती है स्वमान से, एक बात याद रखनी है। दूसरी परिस्थिति, बोलो, सबको अनुभव है कुछ ना कुछ, परिस्थिति हमें कुछ सिखाने आई है, आगे बढ़ाने आई है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाने आई है। कई पुरुषार्थी ऐसे भी होते हैं जब परिस्थिति होती है तो चुस्त रहते हैं, 3 बजे उठ जाएंगे सवेरे, और जब परिस्थिति नहीं है 6 बजे उठेंगे, है ही नहीं कुछ मौज का जीवन है। तो जब बाबा देखता है ये तो ठंडे ठाकुर हो गए, कर देता है कुछ, जगाओ इन्हें, जगना जरूरी है ना, उसको लगता है जिन्हें महान कार्य करना है ये ठंडे हो गए, कैसे चलेगा काम, तो जगाने के लिए भी जरा कुछ कर देता है। बाबा नहीं करता, वह ड्रामा में है ऐसा। और आगे चलो, परिस्थितियां और आगे चलो, परिस्थितियों से अधिक पावरफुल हम हैं, ये याद रखना है। पावरफुल परिस्थितियां नहीं होती, पावरफुल मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अगर ये स्मृति रहे तो हमें परिस्थिति बहुत छोटी लगेंगी। याद रखना है, बड़े हम हैं और परिस्थिति बहुत छोटी है। संकल्प चेंज करेंगे, बहुत बड़ी परिस्थिति है, बहुत बड़ी है, ये कहने से हमारी शक्तियां वीक पड़ जाती हैं, हमें परिस्थितियां बड़ी लगने लगती हैं। बाबा ने कहा है, बातें बड़ी नहीं होती, बोलो आगे, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो, ये याद रखना है। जिस बात के बारे में हम सोचे ही नहीं वो खत्म हो जाती है, हम उसे कम्युनिकेट ही न करें, हमारे वाइब्रेशंस उससे जुड़े ही नहीं, तो बहुत जल्दी खत्म होगी। लेकिन इसके लिए बहुत पावरफुल स्थिति चाहिए, हम उससे बिल्कुल डिटैच हो जाएं। जैसे परिस्थिति हमें नहीं किसी और को है, बहुत बड़ी चीज है ये। एक और बात याद रखेंगे, ये बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है सबके लिए, परिस्थिति आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं हमें कौन साथ दे रहा है। सावधान करेंगे अपने को कि छोटी मोटी परिस्थिति हमें इतना परेशान न कर दे, इतना उलझा न दे कि हमें ये भूल ही जाए कि भगवान हमारा साथी है। परिस्थितियां भिन्न भिन्न तरह की आती हैं, हमें अपने को सावधान करना है और समाधान करना। एक परिस्थिति सुनाओ किसी की, दो बहनें, बहुत पुरानी ज्ञान में, दोनों के अंदर भय बढ़ता जाता है दिनों दिन। किस चीज का भय है, अगर वो सुन लें कि यहाँ किसी की मृत्यु हुई है तो सारी रात गई उनकी, उनके वहां नहीं, कहीं भी अखबार में पढ़ लेना कोई मर गया, अखबार में तो डालते ही रहते हैं, तो उनकी नींद गई। अगर उन्होंने कहीं अर्थी देख ली तो कई दिन गए, सोचने की बात है, सच्ची बात सुना रहा हूं, कहानी नहीं है ये। और भय उनके चेहरों पर आ गया था, जैसे अंदर डरी हुई आत्मा। क्यों होता है ऐसा? उसने कहा, अगर हमारा कोई संबंधी शरीर छोड़ देता है, छोड़ते तो है ना कोई बुजुर्ग हुए, तो कहा बस हम जैसे जिंदे ही हम मर जाते हैं। क्या कारण? नहीं, मोह आदि नहीं। किसी जन्म में उनकी मृत्यु बड़ी कष्टदायक रही है, अति पीड़ित हुए हैं वो मृत्यु से, तो मृत्यु का भय उनके अंतर मन में समा गया है। मैंने उन्हें कई चीजें सिखाई, पर देखा उनका भय इतना बढ़ा हुआ था कि उन्हें ये विश्वास ही नहीं था कि उनका भय खत्म हो जाएगा क्या। उनको तो ऐसा लगता था कि विनाश काल हम कैसे देखेंगे। मुझे कहा ये कि बाबा तो कहते हैं विनाश देखना मासिक अगर नहीं है, हमारा क्या होगा विनाश में। ऐसी भी परिस्थितियां बहुतों पर आ रही हैं। अब बहुतों को उनके पाप डरा रहे हैं। जन्म जन्म जिसने बहुत पाप करके आनंद मनाया था ना, आनंद मनाते हैं ना पाप करके, पैसा ले लिया किसी का, बड़े आनंदित, वाह सफल हो गए हम, तो उनकी भी सफलता होती है ना। देवी के मंदिर में भी चले गए, आपके ही मंदिर में गए, काहे देवी सफलता दिलाना आधा तुम्हारा, आप कई मंदिरों से आशीर्वाद लेके अच्छा काम कराए। पाप डरा रहा है, बहुत लोगों को उनके मनोविकार भयभीत कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत शराब पी रहे हैं आजकल, दुकानें बहुत खुल रही हैं, यंग लोग शराब पी रहे हैं। डॉक्टर लोग जानते हैं शराब पीने से क्या होता, आजकल लीवर फेल हो रहे हैं शराबियों के, जल्दी जल्दी मृत्यु, किडनी फेल हो रही है, किसी के हार्ट पे इफेक्ट, किसी और किसी अंग पर इफेक्ट। मेरे पास आते रहते हैं ऐसे केस, माताएं लाती हैं अपने बच्चों के, तो परेशानी होती है। ऐसी परिस्थितियों में जब घर में ही ऐसी परिस्थिति चल रही हो, क्या करना चाहिए? सभी को संभलना है इस बारे में। परेशान होने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा वाइब्रेशंस देने से, उन्हें मदद करने से, क्योंकि वो हमारे अपने होते हैं। उनकी परिस्थितियां हमें परेशान करेंगी, अगर हम उन्हें वाइब्रेशंस देंगे, उन्हें मदद करेंगे, तो वो भी उस परिस्थिति से निकल जाएंगे और हमारी स्थिति भी बिगड़ेगी नहीं। तब परिस्थितियों में हम एक रस रहेंगे और हमें ये सब ऐसा लगेगा कि ये तो जीवन में है, ये तो है, ये क्यों है ये नहीं, यही है, इसी तरह तो हमें आगे बढ़ना है। बहुतों को ये संकल्प होता है ये क्यों है, क्यों का उत्तर सबके पास होना चाहिए, भले वो आपके बच्चे हैं, पर आत्मा तो एक छोटा बच्चा आपके घर में 3 साल का, अनेक परिस्थितियों से वो परेशान है। ऐसे बच्चे भी हैं आजकल 3 साल के, 5 साल के, आप सोचेंगे ये बच्चा इसने अभी क्या किया, ये क्यों ऐसा हो गया, इस क्यों का उत्तर आपके पास है या नहीं है? शरीर ही तो बच्चा है ना, आत्मा तो बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई ना, 5,000 साल की हो गई आत्मा, तो अपने साथ न जाने क्या क्या लाई है। बीमारियां पूर्व जन्मों से भी तो आ रही है ना, माँ बाप से नहीं, पूर्व जन्मों से। 2 साल के बच्चे को कैंसर, 3 साल के बच्चे की किडनी फेल, ऐसे ऐसे केस मेरे पास फोन करती है माताएं, बच्चे ने जन्म लिया है, 1-2 मास में ही पता चला डायबिटीज है बच्चे को, शुगर है, बच्चे को किडनी काम नहीं कर रही है, ऐसे केसे जाते रहते हैं। क्यों है ये सब जानते हैं ना? हमें उन्हें मदद करनी है योगदान देकर। हर परिस्थिति को योग बल से पार करने का अनुभव करेंगे तो कोई परिस्थिति आएगी, ये विश्वास रहेगा, ये पार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये योग बल, योग करें, चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो, कोई और परिस्थिति हो, उससे जो पूर्व कर्मों का उल्टा खाता है वो खत्म होके लाइन क्लियर होने लगती है। तो परिस्थितियों को मनोरंजन बनाना है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, वो बहुत जल्दी नहीं, और वो तब होगा जब हम परिस्थितियों से अधिक पावरफुल बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। इसकी साधनाएं सबको करनी है, समय सफल करना है। करना है या नहीं, सब अपने से देखेंगे, ये किसी को कहने से कुछ नहीं होता, ये स्वयं से बात करने की बात है। मेरा समय सफल होता है या रोज दो चार घंटे व्यर्थ में बीतते हैं, दो चार घंटे, जबकि एक एक सेकंड साल के बराबर है। कईयों के दो चार घंटे रोज व्यर्थ में बीत जाते हैं। हमारा कितना समय व्यर्थ में जाता है? क्या हमें अपने समय की वैल्यू है? जो इस सुंदर समय को वेस्ट करेंगे, परिस्थितियों पर उनकी विजय नहीं होती। वो समय आने पर अपने को खाली अनुभव करते हैं, क्योंकि जब भरने का समय था तब उन्होंने कुछ किया नहीं। जैसे बच्चे जो पढ़ते नहीं ठीक से, क्या होता है जानते हैं ना सब, और जो पढ़ते हैं वो परीक्षा को एंजॉय करते हैं। जो होशियार हैं उन्हें परीक्षा का आनंद आता है। बाबा भी कहा करते थे, होशियार बच्चे तो परीक्षा का इंतजार करते हैं। हमारे पास भी जीवन में बहुत परीक्षाएं आती हैं, हम भी उसको एंजॉय करेंगे, यानी मनोरंजन होगा, यदि हमारी स्टडी, हमारी तैयारी अच्छी होगी। यहाँ स्टडी का अर्थ ही नहीं कि मुरली पढ़ते रहें सारा दिन, वो तो ठीक है पढ़ते भी रहें, लेकिन साधनाएं भी जरूरी हैं। मुरली से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान भी हमें बल देगा, लेकिन योग बल की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। समय बहुत कीमती, समय की कीमत किससे पूछो? एक सेकंड, आधा सेकंड, चौथाई सेकंड, दसवां हिस्सा सेकंड का, उसकी कीमत किससे पूछो सुशील? जिसकी ट्रेन निकल गई, क्या ट्रेन तो आधे सेकंड में नहीं निकलेगी? उन दौड़ने वालों से, एथलेटिक्स कहते हैं ना, उनसे पूछो कि दसवां हिस्सा सेकंड का पीछे रहे, बस कदम उसका पहले पड़ गया, उसका उठा हुआ था लेकिन इतना था, बस इतना पड़ा लेकिन उसका पहले पड़ गया, उसको गोल्ड मेडल, उसको सिल्वर मेडल, है ना समय की कीमत उसके लिए? उसके लिए चौथा ही सेकंड, दसवां हिस्सा सेकंड भी बड़ा मूल्यवान हो गया है। हाँ, ऐसे ही हार जाते हैं ना ये धावक, छोटी, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है ना, तो बहुत मामूली सा। परीक्षा के समय परीक्षा दे रहे हैं, टाइम हो गया है, अब आपको 5 मिनट मिल जाएं तो वो क्वेश्चन पूरा कर दें, लेकिन नहीं मिल रहे हैं, स्ट्रिक्ट है वो, तो वैल्यू हो गई ना उस समय के समय की। दो ही लाइन बची हैं, आपको एक ही मिनट चाहिए था, कॉपी ले ली, नहीं टाइम पूरा, घंटी बजा दी, वैल्यू हो गई ना। ट्रेन छूट जाती है, एक मिनट पहले छूट गई हो, अभी तो फास्ट स्पीड की चलने वाली है, जो नहीं जाएगा। सुना रहे थे दिल्ली में एक कि एक भाई स्टेशन के पास रहता है, राजधानी से उसे आबू आना था यहाँ बाबा से मिलने। उसने क्या सोचा कि गाड़ियां सदा ही लेट चलती हैं, यही तो है, दो मिनट का ही रास्ता, चला जाऊंगा। तीन मिनट के बाद आया, गाड़ी का आखिरी डब्बा जा रहा था, कहा ये कौन सी जा रही है, राजधानी, अरे निकल गई, रोको रोको, वो कोई रोकेगा? कोई आगे खड़ा होकर रोक थोड़ा ही देगा उसे। एक एक मिनट की वैल्यू है ना, ये दिन हमें भी याद आया करेंगे या नहीं? ये दिन याद आया करेंगे। हम अंत में पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे अपने जीवन की यात्रा को, हमने क्या किया, समय को सफल किया था या ऐसे वैसे ही बिता दिया, हल्केपन। कुछ लोग ऐसे हैं व्यर्थ में भी नहीं रहते लेकिन साधारण में जीवन बिताते हैं, पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पाते, उनके सामने कोई समस्या भी नहीं होती, जीवन भी अच्छा होता है लेकिन बहुत हल्केपन से जीवन जीते रहते हैं। उसमें भी जीवन तो अच्छा हो जाता है लेकिन स्वयं को उतना समर्थ हम नहीं बना पाते ताकि हम दूसरों को भी दे सकें, मदद कर सकें, दूसरों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकें और आने वाली परिस्थितियों को जंप देकर पार कर लें। तो समय को खुद वैल्यू देना है, और यही नहीं कि समय वेस्ट न हो, पर सफल कहां हो, ये तो नहीं कि समय हम वेस्ट नहीं कर रहे भाई, लेकिन सफल किस में कर रहे हैं, अखबार पढ़ने में। किस में सफल करें, सबसे पावरफुल चीज याद में, दूसरा सेवाओं में, सेवाओं का दूसरा नंबर है, वो तो करनी है लेकिन याद में। कई लोग ये भी सोचते हैं सेवा छोड़ो, याद याद करो, उससे भी कुछ नहीं होगा। एक दो तो ऐसे रहते ही हैं सब जगह, हमारे पास भी हैं एक दो ऐसे, याद करना में सेवा नहीं, मुश्किल से आधा घंटा सारा दिन करेंगे, बाकी योग करेंगे, योग में सो जाएंगे। सवेरे 2 बजे उठते ही पहुंच जाएंगे और सब देखेंगे तो सो गए हैं, लोग उन्हें कहते भी हैं भाई सोने के लिए तो बेड दी हुई है बाबा ने, सोना यही जरूरी है क्या, वहीं सो लेते, वहां बहुत अच्छी नींद आती है। ये अच्छी तरह जान लें, कोई भी पुरुषार्थ में भी श्रेष्ठता या सफलता तब तक नहीं पा सकते जब तक बाबा की दुआएं आत्मा के साथ न हो। आज भी था ना, ये सफलता के लिए था, सफल वो होते हैं जिनको दुआएं मिलती हैं, आत्माओं की भी और बाबा की भी, और बाबा की दुआएं बिना सेवाओं के नहीं मिलती। जो यज्ञ उसने रचकर हमारे हाथों में सौंप दिया है, अगर उसको हम सफल नहीं कर रहे हैं तो उसकी नजरों से हम हट जाते हैं, और तब हम कितना भी बाबा के रूम में बैठे रहें वहां सोएंगे ही, योग नहीं लगेगा। इसलिए सेवाओं में बहुत अच्छा, देखो किसी ने हमें कुछ काम दिया हो उसका प्यार हमें कब मिलेगा, काम पूरा कर देना, उसको देखना भी ना पड़े, उसने हमें काम दिया और उसको पता है ये हुआ, तब वो कितना राजी होगा, दुआ देगा, हमें अपनी शक्तियां भी दे देगा, लौकिक में पैसा भी दे देगा, मदद कर देगा। और बाबा दुआएं दे देता है, कोई वरदान दे देता है साथ में, जो चारों युग हमारे साथ चलता है। इसलिए सेवाओं में अपने को ढीला नहीं रखना है, समय को सफल करेंगे। अब दूसरा नंबर किसको सफल करेंगे, श्वास। बहुत अच्छी बातें थी आज, श्वास रुकेगा नहीं, कईयों का रुकता रहता है ना, हॉस्पिटल में जाते रहते हैं, श्वास रुक रहा, भारी हो रहा है, श्वास रुक रहा है, किसी को कफ हो गया, किसी को दमा हो गया, किसी को और कुछ, ठीक है ये बीमारियां तो हैं, लेकिन अब समय को सफल कर, श्वासों को सफल करें। श्वासों से जोड़ते हैं ना लोग हेल्थ को, लौकिक में कहते हैं ना हर एक के श्वास फिक्स हैं। अब पता नहीं किसने फिक्स किए हैं, ये तो पता नहीं, पर श्वास सफल करें। इसलिए लोग कहते हैं ना श्वास कम तो आयु बढ़ जाएगी, बहुत तेज श्वास चलते हैं तो आयु घट जाती है। कुछ रहस्य तो मेडिकल का ही होगा इसमें और मनोविज्ञान का, लेकिन हम अपने श्वासों को बाबा की याद में, दूसरों को सुख देने में, दूसरों को अच्छे श्वास लेने में हमारे श्वास बीते। कई ऐसा भी करते हैं ना कि दूसरों का श्वास घुटने लगे, ऐसा व्यवहार करते हैं ना, वो कहेंगे यहाँ तो जीना ही मुश्किल हो गया, यहाँ से तो हम चलें। तो जो दूसरों को श्वास नहीं लेने देते सुखों का, वो कभी सुखी नहीं रह सकते। ठीक है, तो श्वास सफल करने हैं, अच्छे चिंतन में भी, अच्छे स्वमान के अभ्यास में। पांच स्वरूपों का अभ्यास है हमारे पास, बहुत सुंदर, जिसमें स्वमान भी आ जाते हैं और योग माना हम बाबा के साथ रहते हैं। योग माना बाबा के साथ रहना, बहुत अच्छा और सूक्ष्म था। शक्तियों को सफल करना, इस पे जरा थोड़ी चर्चा कर लें। शक्तियां वेस्ट कैसे होती हैं? कोई समस्या हमारे सामने आ गई, हमारे मन में युद्ध चल रहा है, तो शक्तियां नष्ट हो रही हैं। किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम सहन नहीं कर पा रहे, बहुत सोच रहे हैं, फीलिंग बहुत आ गई, तो शक्तियां नष्ट हो रही हैं। हर जगह इसको आप देख लें, विशेष रूप से व्यर्थ संकल्पों में, निगेटिव संकल्पों में, चिंताओं के संकल्पों में शक्तियां नष्ट होती हैं। इसको ही बाबा दूसरे शब्दों में भी कहते हैं, शक्तियों को अपने लिए यूज न करो। धन तो अपने लिए भी यूज करने की बात होती है, और शक्तियां हम अपने लिए यूज भी करते हैं, पर जहां बाबा कहता है शक्तियों को केवल अपने लिए यूज न करो, उसका अर्थ है कि संघर्ष में, जो हमारे मन में बहुत संघर्ष चलते हैं, तब हम अपने को शांत करते हैं। युद्ध चलता है मन में, उसमें हमारी शक्तियां यूज हो जाती हैं, तो फिर वो विश्व कल्याण के लिए बचती नहीं है। तो हमें शक्तियों को भी सफल करना है, शक्तियां जमा करनी है। अब सफल करने का अर्थ है कि हम अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन संसार में फैलाएं, हम अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन दूसरों को दें। हम शक्तिशाली बन गए तो दूसरों के भय को मुक्त करें। हमारी शक्तियां हमारी दृष्टि से भी निकलेंगी, उससे दूसरों को बल मिलेगा। ये है शक्तियों को सफल करना। तो न हमें वेस्ट करना है, न अपने लिए बहुत यूज करना है, लेकिन हम दूसरों की सेवाओं में वाइब्रेशंस के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, बोल के द्वारा भी, योगदान देकर भी दूसरों को मदद करेंगे। ये हुई शक्तियों की मदद करना। और बाबा का ये बहुत ही सुंदर एक महावाक्य है, सकास देने में बिजी हो जाओ तो तुम्हारे विघ्न स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सकास देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। वैसे हम एक व्यक्ति को मदद करें, दस को मदद करें, सौ को मदद करें, लेकिन सकास देने से करोड़ों को मदद जाती है, तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है, इस पुण्य के बल से विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सभी इस पे ध्यान दें, इसलिए पुण्य करेंगे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। माताएं पुण्य करने आ गई ना यज्ञ सेवा, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। जो बार बार आती हैं सेवाओं में, माताएं आती हैं ना कई, उन्हें महसूस होता होगा कि इस पुण्य का बल कहाँ मिलता है, परिवारों को भी मिलता है, आपके पुण्यों का बल आपके बच्चों को भी मिलता है, बल्कि हमारे पुण्यों का बल तो कहाँ कहाँ जाता है बोलो। बाबा का ये महावाक्य याद कर लें, और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो तो इसको समा लें आज। तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए तुम्हें उसका फल पदम गुना मिल जाता है। ध्यान देंगे, हमारे पुण्य केवल अब हमारे लिए नहीं है, हमारा निष्पाप जीवन करोड़ों करोड़ों मनुष्यों को निष्पाप बनने की प्रेरणा देगा, हमारा पवित्र जीवन अनेकों को पवित्र वाइब्रेशंस जाएंगे उससे, हमारी दूसरों के लिए शुभ भावनाएं, ये पुण्य है ना, वो अनेकों का कल्याण करेगी। हमारा योग भी बहुत बड़ा पुण्य है जिससे सबको बल मिलता है। तो सभी ये याद रखेंगे, हमारे पुण्यों का असर हम पर भी, परिवार पर भी, और हमारा जो ये विशाल परिवार है, पहले ब्राह्मण परिवार फिर ये विश्व परिवार, इस सब को हमारे पुण्यों का बल पहुंचता है। कितना बड़ा काम हो गया और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी हो गई। और बाबा ने जोड़ दिया था, यही गति पाप की भी है। हमसे पाप हुआ माना उसका दोष भी इतना बड़ा हम पे आ जाएगा। तो हमें पुण्यों की पूंजी बढ़ाते चलना है। आज की इस मुरली को, ये जो अव्यक्त मुरलियां आ रही हैं, पिछली बार से पिछली बार की मैं और मेरे पन पर थी, बहुत गुहिये मुरली याद है ना, पता नहीं यहाँ हमने क्लास की या नहीं, पिछली बार नहीं हुई थी, जिसमें बाबा ने कहा था, अश्रत्नों का आधार भी मैंपन का त्याग है। ब्रह्मा बाबा नंबर वन में गए क्योंकि मैंपन को सबसे पहले छोड़ा। बहुत गुहिये बातें थी उस मुरली में भी, बहुत गुहिये राज भी था। प्रभु देन में मैंपन आना माना, खजानों को गंवाना। एक एक बात अनमोल है इन मुरलियों की, हमारी बुद्धि के कपाट खोलने वाली है। सब कुछ हमें बाबा ने दिया और हम सोचने लगे क्या मैंने किया, नहीं मैंने किया, हमारा तो है, बाबा ने दिया तो खजाने हमारे तो हो गए, लेकिन हम सोचने लगे मैंने किया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इस मैंपन से हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती रहती हैं, हमारे जीवन में जो दिव्यता आनी चाहिए, जो ईश्वरीय बल रहना चाहिए ना, वो खत्म हो जाता है, खालीपन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होगा इससे। तो ऐसी मुरली, आज की मुरली में बहुत सारी बातें थी, जो पढ़े लिखे हैं उनको अवश्य लिखनी चाहिए, वो लिखनी चाहिए। लिखने से क्या होता है पता है, याद जल्दी होती है, पढ़ तो सकते ही हैं, पर लिखने से वो हमारी मेमोरी में छप जाती है। इसलिए जब हम लिखें, देखो मुरली में तो जल्दी लिख देते हैं, बहुत बातें होती हैं, पर अगर हम किसी चीज को धीरे लिखें फीलिंग सहित, तो वो हमारे अंदर समा जाती है। तो ऐसी ही मुरली आज भी थी, जिसमें एक और अच्छी बात थी जो मैंने रिपीट तो की है, निश्चिंत निश्चय और सफलता। जो निश्चिंत हैं उनको सहज सफलता मिलती है, और निश्चिंत रहने का आधार है निश्चय। अपनी विजय में निश्चय हमें निश्चिंत करेगा ना। हम यहाँ से जाना है कहीं, हमें 5 मिनट है समय, 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे, हमें निश्चय है 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, तो निश्चिंत होके चलेंगे ना। आपने खाना बनाया, आपके घर में 4 मेहमान आए हैं, आपको निश्चय है जितना बना है सब आराम से खाएंगे, तो निश्चिंत रहेंगे ना। और कम हो तो लगेगा कम न हो जाए, कहीं थोड़ी गड़बड़ न हो जाए, कोई ये चीज ज्यादा न मांग ले, पनीर बनी है कभी 2-4 बार ज्यादा मांग ले, मुश्किल हो जाए। निश्चय से निश्चिंतता आती है, और इसकी डेफिनेशन बहुत गहरी है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। हमें निश्चय होना चाहिए स्वयं में और बाबा में, केवल ये नहीं कि बाबा आया हुआ है, ये तो निश्चय सबको ही है, और इसमें बहुत गुह्यताएं हैं। निश्चय होना चाहिए अपनी सफलता में, निश्चय होना चाहिए अपने भविष्य में, निश्चय होना चाहिए अपने कार्य करने के तरीके में, तो सफलता ही सफलता है। पढ़ना इस मुरली को फिर से, आजकल तो मुरली भी रहती है, लाइब्रेरी में भी है, लिखे भी होंगे। ओम शांति। बत्ताली की जरूरत नहीं।